बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 12 अक्टूबर, दिन शनिवार। मैं हूं मोहम्मद शाहिद। देश की अर्थव्यवस्था सुस्ती की गिरफ्त में, लेकिन सरकार का मानना है कि अर्थव्यवस्था पर नहीं है कोई संकट। क्या सुस्त अर्थव्यवस्था से और गहरा सकता है बेरोजगारी का संकट? क्या हो सकते हैं इसके और भी असर? आखिर कैसे सुधरेगी हालत? आज बीबीसी इंडिया बोल में चर्चा होगी इसी विषय पर। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन कॉल करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। कार्यक्रम में चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी, लेकिन सबसे पहले ठहरेंगे और सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। भारत प्रशासित कश्मीर में सोमवार से पोस्टपेड मोबाइल फोन सेवा काम करने लगेगी। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि स्थिति की समीक्षा करने के बाद जम्मू कश्मीर के शेष हिस्सों में मोबाइल फोन सेवा बहाल करने का फैसला किया गया। सभी पोस्टपेड मोबाइल फोन सोमवार यानी 14 अक्टूबर 2019 दोपहर 12 बजे से काम करने लगेंगे। ये फैसला घाटी के सभी 10 जिलों में प्रभावी होगा। केन्याई धावक एलिचर्ड किपचोगो ने इतिहास रचते हुए 2 घंटे से भी कम समय में मैराथन दौड़ पूरी करने वाले दुनिया के पहले धावक बन गए हैं। उन्होंने 40 किलोमीटर की मैराथन 1 घंटे 59 मिनट और 40 सेकंड में पूरी की। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जब उन्होंने ये कीर्तिमान बनाया तो वहां मौजूद दर्शकों की भीड़ ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। ओलंपिक चैंपियन किपचोगे ने यह कारनामा एक अनौपचारिक दौड़ में किया, इसलिए खेल के आधिकारिक रिकॉर्ड्स में इसे दर्ज नहीं किया जाएगा। ये कीर्तिमान बनाने के बाद एलियट किपचोगे ने कहा,
I am feeling good. It has taken 65 years for a human being to make history in sport.
मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। 65 साल से इस खेल में किसी ने भी इतिहास नहीं बनाया था। मैंने 2017 में भी कोशिश की थी लेकिन मैं कर नहीं सका। मैं इसे 2 घंटे से भी कम समय में करना चाहता था ताकि लोगों को प्रेरित कर सकूं, उन्हें बता सकूं कि कोई इंसान सीमित नहीं है, आप भी ये कर सकते हैं। ये थे मैराथन धावक एलियट किपचोगे के शब्द। जापान में बीते 60 साल के सबसे बड़े तूफान टाइफून हगिबिस ने राजधानी टोक्यो के पास दस्तक दी है। बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी के बीच लाखों लोगों से अपना घर छोड़कर जाने की अपील की गई है। अधिकारियों ने चेताया है कि इस तूफान से भारी बारिश की आशंका है और इस तरह की बारिश कुछ दशकों में महज एक बार होती है। तूफान को देखते हुए उड़ानें और ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी गई हैं और रग्बी विश्व कप के 2 मैच भी स्थगित कर दिए गए हैं। टोक्यो में मौजूद डेली बीस्ट अखबार के संवाददाता जेक एडेलस्टीन ने कहा,
The rain is coming down so hard that it's like being shot in the face with a BB gun. It is intense. You can hear the wind from the 17th
बारिश की रफ्तार इतनी तेज है जैसे बंदूक की गोलियां हों। मैं 17वीं मंजिल पर हूं और यहां भी तेज हवा की रफ्तार सुन सकता हूं। हालात अभी और खराब होने वाले हैं। ये बहुत तगड़ा तूफान है। लोग बता रहे हैं कि 1958 के बाद से ऐसा तूफान नहीं आया। मैं समझ सकता हूं कि क्यों विश्व कप के मैच रद्द किए जा रहे हैं। ये भयंकर है। ये थे टोक्यो में मौजूद पत्रकार जेक एडेलस्टीन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर पूर्वी सीरिया में तुर्की सुरक्षा बलों और कुर्द लड़ाकों के बीच घमासान जारी है। रसल आयन शहर बारूद के गोलों के चपेट में आया है, जिसकी वजह से वहां आसमान में काफी धुआं देखा गया है। तुर्की के लड़ाकू विमान वहां चक्कर लगा रहे हैं और जमीन पर तेज गोलीबारी का शोर है। तुर्की की सेना का कहना है कि उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन कुर्द लड़ाकों ने इसका खंडन किया है। ब्रिटेन स्थित मानवाधिकार संस्था सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि बुधवार को हमला शुरू होने के बाद से अब तक कुल 120 से ज्यादा लड़ाके मारे गए हैं और साथ ही 30 आम नागरिकों की भी मौत हो गई है। वहीं कुर्द लड़ाकों की गोलीबारी में तुर्की सीमा के उस तरफ 27 आम नागरिकों की मौत का दावा किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के न्याय मंत्री रोनाल्ड लमोला ने कहा है कि वो भ्रष्टाचार के अभियुक्त भारतीय मूल के गुप्ता बंधुओं को वापस दक्षिण अफ्रीका लाने के लिए काम कर रहे हैं ताकि उनके खिलाफ आरोपों की जांच की जा सके। अभी तीनों भाई दुबई में हैं। गुरुवार को अमेरिका के वित्त विभाग ने उन पर और एक अन्य दक्षिण अफ्रीकी व्यापारी पर पाबंदियों का ऐलान किया था। एक स्थानीय मीडिया संस्थान से बातचीत में न्याय मंत्री रोनाल्ड लमोला ने कहा कि उनकी सरकार भारत और दुबई प्रशासन के संपर्क में है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार उन्हें वापस लाकर एक जांच आयोग के सामने पेश करना चाहती है। बीबीसी समाचार।
स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी रेडियो सेवा के साप्ताहिक कार्यक्रम इंडिया बोल में और मैं हूँ मोहम्मद शाहिद। श्रोताओं, हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मुफ्त फोन कॉल करिए। हमारे नंबर नोट कर लीजिए 1811-7000 और 1811-7001। एक बार फिर नंबर सुनिए 1811-7000 और 1811-7001। श्रोताओं, साल 2019-20 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 5% रही, जो पिछले साल की तुलना में 0.8% कम है। ये जीडीपी बीते 5 सालों में सबसे कम थी। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2019-20 के लिए देश की अनुमानित विकास दर को 6.99% से 6.1% कर दिया। अर्थव्यवस्था में सुस्ती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कल औद्योगिक उत्पादन के आए आंकड़े बेहद निराशाजनक रहे। देश में औद्योगिक उत्पादन बीते 7 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अगस्त में औद्योगिक उत्पादन दर के आंकड़े नकारात्मक रूप से 1.1% रहे। अर्थव्यवस्था की सुस्ती का असर रोजगार पर भी पड़ता है। इस साल जून में सांख्यिकी मंत्रालय के नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी NSSO ने एक आंकड़ा जारी करते हुए बताया था कि देश में बीते साल बेरोजगारी की दर 6.1% रही। ग्रामीण भारत में जहां ये 5.3% थी, वहीं शहरी भारत में ये 7.8% है। लेकिन आज केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने NSSO के आंकड़ों को गलत बताया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
मैं उस रिपोर्ट को गलत कहता हूं और पूरी जिम्मेवारी के साथ NSSO ने जो मैंने इतने आंकड़े बताए उसको उसमें रखा है। मैंने आपको 10 नंबर बताए, सब प्रामाणिक नंबर है। एक नहीं है उनके रिपोर्ट में। क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी क्षेत्र में, मुद्रा लोन में, कॉमन सर्विस सेंटर्स में। हमने कभी नहीं कहा था सबको सरकारी नौकरी देंगे, और वो भी नहीं कहते हैं। इसलिए कुछ लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से उसको मिसलीड करने की कोशिश की थी, एंड आई एम सेइंग सो विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
रविशंकर प्रसाद का कहना था कि NSSO ने कई क्षेत्रों के रोजगारों को अपने सर्वे में शामिल नहीं किया, साथ ही उन्होंने आर्थिक सुस्ती को भी नकारा। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को नापने का एक और पैमाना भी दिया। उन्होंने कहा कि बीती 2 अक्टूबर को फिल्में रिलीज हुई जिसने 120 करोड़ रुपए कमाए। सुनिए इस पर उनकी राय।
ह्यूज बिजनेस बाय मूवीज। 2 अक्टूबर को 3 मूवीज रिलीज हुई और मिस्टर कोमल नाहटा है, बहुत बड़े फिल्म ट्रेड के हैं, आप जानती होंगी। उन्होंने कहा है कि द नेशनल हॉलीडे ऑफ 2 अक्टूबर सॉ अर्निंग ऑफ ओवर 120 करोड़ रिकॉर्ड बाय 3 मूवीज, वॉर और जोकर एंड सायरा। अब जब देश में इकोनॉमी थोड़ी साउंड है तभी तो एक दिन में 120 करोड़ रुपया रिटर्न आता है।
देश में बेरोजगारी की दर बीते 45 सालों में सबसे अधिक बताई जा रही है, लेकिन इस समय इसका कोई सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है। अर्थव्यवस्था की सुस्ती से कैसे बेरोजगारी का संकट जुड़ा हुआ है और इसका क्या हल है, इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार आलोक जोशी जी मौजूद हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीबीसी इंडिया बोल में।
धन्यवाद शाहिद, और मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ वापस बुलाया। 15 साल पहले मैं बीबीसी हिंदी के लिए काम किया करता था।
तो बिल्कुल, हमारे श्रोता सुन भी रहे होंगे और उम्मीद है कुछ ऐसे श्रोता भी फोन कॉल करेंगे जो आपको पहचानते होंगे। तो आलोक जी, सबसे पहला सवाल, अर्थव्यवस्था की सुस्ती जो है, इसे आसान भाषाओं में अगर समझना हो तो क्या इसको कैसे समझा पाएंगे आप, क्या कारण है इसके?
देखिए, आपने बताया है, मैं उसको बहुत आसान भाषा में, और मैं काम यही करता हूँ कि जो मैं जिस तरह अपने आसपास देखता हूँ
जी,
मैं कहता ये हूँ, जैसे कि अभी ये बात हो रही है कि 2 साल में पहली बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ है कि एक होता है जिसको मंदी या स्लो डाउन कहते हैं, वो है कि एक चीज बढ़ रही थी, वो 7% की रफ्तार से बढ़ रही थी, वो 5% की रफ्तार से बढ़ने लगी, यानी 100 का 107 होना था, 105 हो गया। लेकिन अगर वो 100 का 99 हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है पहली बार। और जो अभी आपने औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े बताए उसमें ये 23 में से 15 पैरामीटर्स, 23 उद्योगों में से 15 में ये कॉन्ट्रैक्शन अनुभव किया गया है। तो ये भारी चिंता की बात है। और चिंता की बात क्यों है? क्योंकि अगर इन उद्योगों में तरक्की के बजाय कमी आ रही है, यानी 100 रुपए का 99 रुपए रह जाता है, 98 रुपए रह जाता है, तो फिर आदमी धंधा क्यों कर रहा है? व्यापार इसलिए होता है कि कारोबार बढ़े, उससे और पैसा बने, उससे लोगों का रोजगार बने, कमाई बढ़े, पैसा बटे। लेकिन अगर उसमें संकुचन शब्द है संस्कृत का कॉन्ट्रैक्शन के लिए, अगर संकुचित हो रहा है, सिमट रहा है, कम हो रहा है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी
जी।
कौन आदमी ऐसे में अपना पैसा लगाएगा? और इसी का एक दूसरा आंकड़ा अगर आप जोड़ें, 2-3 दिन पहले आया है आरबीआई का डेटा आया था, जिसमें आया कि 88% गिरावट आई है कमर्शियल क्रेडिट फ्लो में, 7 लाख करोड़ से कुछ ऊपर पिछले साल 2018 में 6 महीने में, अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच तक 7 लाख करोड़ से ऊपर की रकम कमर्शियल सेक्टर ने उठाई थी। इस साल उन्हीं तारीखों के बीच लगभग 90,000 करोड़ रुपया उठाया गया है, तो ये 100 में 88 पैसा खत्म हो गया। तो अगर कर्जा नहीं ले रहे हैं, और ये जो सेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये कमर्शियल सेक्टर जिसको कहते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री शामिल नहीं है, इसमें ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं है, और इसमें फाइनेंस शामिल नहीं है। तो इसमें कौन शामिल है? कमर्शियल सेक्टर है वो लोग जो व्यापार करते हैं, यानी वो छोटा व्यापारी हो, दुकानदार हो, उसका डिस्ट्रीब्यूटर हो, या बड़ा रिटेलर हो, ये सब उसमें शामिल हैं जिनसे हमारा आपका लेन देन होता है। जैसे इससे जुड़ा एक आंकड़ा है कारों की बिक्री का, जो आप पिछले कई महीनों से लगातार सुन रहे होंगे कि गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। और ये कार उद्योग वर्षों से इस देश को बताता है कि आर्थिक तरक्की के बैरोमीटर हम ही हैं।
जी,
तो ये चिंता की बात है।
जी बिल्कुल, आपने अलग अलग क्षेत्रों का बताया, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए, सुनते हैं हमारे श्रोता क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है। और राजेश चौहान हमारे जो स्टूडियो मैनेजर हैं बता रहे हैं कि हमें पहला फ़ोन कॉल ले लेना चाहिए। जी, क्या मैं जान सकता हूँ मेरी किससे बात हो रही है और आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
हाँ नमस्कार जी सर।
जी क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
सर मैं भीषमपाल सिंह यादव एटा से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से।
जी भीषमपाल जी बताएं।
और मैं थोड़ा मुझे आधा मिनट एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि आलोक जोशी जी की आवाज़ सुन करके मैं थोड़े अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ, पुरानी यादें आ गई हैं मुझे।
आलोक जी आप ही कह रहे थे हम आए, और मैंने भी आपसे कहा कोई ना कोई श्रोता जरूर मिले।
1975 में आपातकाल जून में लगा था, तब से मैं बीबीसी का नियमित श्रोता हूँ। मैं खाना तो छोड़ सकता हूँ लेकिन बीबीसी नहीं छोड़ सकता।
जी आलोक जोशी जी आपके आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप बताएं आपकी राय।
जी जी मैं जो आज विषय है उसमें कहना चाहता हूँ कि जो मंदी और जो भारत में जो इस समय आर्थिक स्थिति पैदा हुई है
जी,
इसका कारण तो अभी आलोक जोशी जी बता रहे हैं उनसे मैं सबसे सहमत हूँ, लेकिन मेरी नजर में एक मूल कारण ये भी है कि भारत की जो प्राइवेट सेक्टर की संपत्ति है वो चंद लोगों पूंजीपतियों में सिमट कर रह गई है। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, 52% धन जो है 1% लोगों के पास इकट्ठा हो चुका है। देश की आधी आबादी जो नीचे की है, कामगार मजदूर श्रमिक किसान, उनका आधी आबादी जितना पैसा है वो केवल 9 लोगों के पास इकट्ठा हो चुका है। तो मेरा मानना यह है कि जब तक गरीबी रेखा की तरह एक अमीरी रेखा देश के अंदर नहीं बनेगी और तय नहीं होगा कि एक व्यक्ति को अधिकतम कितनी अधिक से अधिक संपत्ति रखनी चाहिए, ये सीमा नहीं खींची जाएगी, तब तक मैं समझता हूँ कि ये स्थिति भारत की सुधरने वाली नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया जी जी भीषमपाल जी, बहुत
आधा सेकंड सर, आधा सेकंड
जी, वक्त बहुत कम है हमारे पास,
बस आधा सेकंड। अगर ये स्थिति इसी तरह चलती रही, युवा बेरोजगार हो गया है, भटक रहा है, और यही स्थिति चलती रही तो निश्चित रूप से देश में अराजकता फैल जाएगी, क्योंकि मरता क्या करता की तर्ज पर युवा फिर क्या करेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद भीषम जी। देखते हैं अगले, सुनते हैं अगले कॉलर को। जी अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं आप?
हेलो
जी, मैं आपकी आवाज आ रही है, आप अपना नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं बताएं जी। आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं हमें जी? आवाज नहीं आ रही है। अब अगले कॉलर से बात करते हैं, आप अपना नाम बताएं।
हाँ सर, मैं पूछत महाराष्ट्र से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ सर। जी
जी अरुण जी बताएं, आप अपनी राय रखें।
हाँ जी, जो ये अभी आर्थिक मंदी चल रही है ये अभी सीजनल है सर जी।
अच्छा,
बारिश बहुत हुई सब पूरी इंडिया में, और जैसे ऑफ सीजन चल रहा है, अभी धीरे धीरे जैसे अभी फेस्टिवल आएगा तो अपने आप ही थोड़ा सा जरा स्पीड आ जाएगा इसको सर, ऐसा मेरा सोचना है सर।
चल बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। आलोक जी आपके पास मैं आता हूँ, अलग अलग राय रख रहे हैं लोग, अलग अलग इनका मानना है। आपने जिस तरीके से बताया, ऑटो सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सारे सेक्टर्स हैं, और उसमें आपकी आपका आपका कहना है कि सब में कुछ ना कुछ हो रहा है, और लेकिन जो एक सवाल है कि सब पर असर होते हैं, हर सेक्टर से असर होते हैं, तो इससे एक रोज़गार भी जुड़ा हुआ चीज़ है, हर सेक्टर से कोई ना कोई रोज़गार जुड़ा रहता है। तो जो लोगों की नौकरियां गई हैं, या जो कहा जा रहा है कि लोगों की नौकरियां कम हो रही हैं, कुछ कुछ संगठन जैसे पार्ले ने भी कहा कि उसके अपने कुछ एम्प्लॉयज कम करने पड़ेंगे, अगर
10,000 के आसपास
उन्होंने आंकड़ा दिया था कि 10,000 लोगों की नौकरियां जा सकती हैं, तो ये बेरोजगारी का संकट कैसे पुष्ट हो पाएगा, किन तथ्यों से?
ये एक बड़ा विकट सवाल है। और अभी हम जब रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे तो आपने ध्यान दिया, उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे आंकड़े दे रहे हैं
जी।
और दिक्कत यह है कि इस वक्त हमारे देश में आंकड़ों की कोई महत्ता नहीं रह गई है और कोई विश्वसनीय तरीका आंकड़ों का है नहीं। हमारे देश में अमेरिका में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हर हफ्ते जारी होता है कि कितने बेरोजगार हैं देश में, लेकिन हमारे यहाँ रोजगार में कौन है और बेरोजगार कौन है इसका कोई हिसाब नहीं होता है
जी।
मैं आपको एक चीज कहूंगा कि बहुत बहुत अमीर लोग हैं हमारे देश में, मुंबई शहर में, जो कोई काम नहीं करते हैं। आप पूछेंगे क्या आप रोजगार करते हैं, तो वो रोजगार में नहीं है, लेकिन क्या आपके खाने कमाने का इंतजाम है? हाँ साहब, खूब है। तो शायद हमारे देश में हमको किसी दूसरे तरह के पैरामीटर्स की जरूरत है,
लेकिन
लेकिन लेकिन साथ में एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है
जी,
जो पिछले काफी समय से लगातार चिंताजनक तस्वीर दिखा रहा है
जी।
और सरकार ने उसके खिलाफ काफी कुछ बोला है, सरकार के तमाम अलग अलग लोगों ने, सरकार ने कोई आधिकारिक वक्तव्य जारी नहीं किया। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े थे जिसमें 44 साल में सबसे खराब एम्प्लॉयमेंट की स्थिति बताई गई थी, लेकिन बाद में कहा गया कि ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसको हम देख के बाद में जारी करेंगे। वो कब जारी होगा अभी हमें पता नहीं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कहते हैं कि आजकल नए तरीके के एम्प्लॉयमेंट हो गए हैं, कोई ओला चला रहा है, कोई उबर चला रहा है, तो इन सबको आपको रोजगार मानना चाहिए, तो हम उसका तो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखें, सच बात यह है, जितने हमारे दर्शक हैं आपके, उनको मैं कहूंगा कि जितने श्रोता हैं वो अगर आसपास देखेंगे, उनको अपने आसपास ऐसे लोग दिखेंगे कि जिनमें किसी की नौकरी चली गई है, किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ी है या उसे आशंका है कि उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। या व्यापारियों से बात करिए, मैंने बहुत सारे व्यापारियों से, छोटे बड़े से बात कर रहा हूँ, वो सब किसी न किसी तरह की चिंता में
है, बिल्कुल है।
और यही वजह है कि लोग डर के मारे अपने खरीद के फैसले टाल रहे हैं, जो बहुत जरूरी चीज नहीं है। खाना, कपड़ा, एसेंशियल खर्चों के अलावा खर्चे कम हो रहे हैं। ऐसे में आप कहेंगे कि रविशंकर जी ने कहा कि साहब लोग फिल्म पर इतने 100 करोड़ कैसे खर्च कर रहे हैं। तो जब आदमी बहुत परेशान होता है तो क्या करता है? वो कुछ समय के लिए, उसको रिलीफ लेने के लिए, भाई मैं कार नहीं खरीद पा रहा हूं, मैं नया घर नहीं खरीद पा रहा हूं, बीवी बच्चों को चल के एक फिल्म दिखा दूं। तो कई बार ये छलावा भी हो सकता है कि फिल्म पर खर्चा, शराब पर खर्चा, दवा पर खर्चा,
यानी वो
इसको आप तरक्की का पैमाना नहीं मान सकते,
तरक्की का पैमाना नहीं मान सकते। और प्रधानमंत्री मोदी का जो उन्होंने भाषण, एक इंटरव्यू में भी उन्होंने एक पैमाना, जिस तरीके से आपने कहा, उन्होंने पकौड़े बेचने का भी एक पैमाना ला दिया था। तो ये एक रोजगार का जो आपने एक अलग अलग जिस तरीके से बताया कि लोग आ रहे हैं और वो कुछ कुछ खर्च करने का जो उनकी सीमा है वो कुछ दिखती नहीं है। जैसे आरबीआई का ही आज ही कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे उन्होंने जारी किया है, तो उसमें बताया कि 26.7% लोग का मानना है कि उनकी आय कम हुई है। तो यानी कि आय कम हो रही है, रोजगार में भी, अगर रोजगार में संकट है, रोजगार की वजह से कमी आ रही है, तो आय में भी इसी वजह से कमी आ रही है, इसका मानना है?
हाँ, तो बहुत से लोगों की आय में तो कमी आ रही है, यानी तनख्वाह कम कर दी गई
जी।
बहुत से लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी, खर्च बढ़ गया, तो इसे भी आप आय में कमी मानेंगे? मानना ही पड़ेगा
जी
कि उसी पैसे से मुझे खर्च चलाना है, लेकिन हर चीज का दाम बढ़ गया है, तो मेरी आय तो इफेक्टिवली कम हो गई ना, उसका जो असर है। और जो अभी भीष्म पाल जी कह रहे थे,
उन्होंने तो ये कह दिया
कि अमीरों की संख्या बढ़ रही है। अभी जो मैं एक आंकड़ा आपसे मैं बात करूं कि 1 करोड़ से ऊपर का इनकम टैक्स में टैक्सेबल इनकम, कर योग्य आय डिक्लेयर करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है
जी।
तो ये चिंता है, क्या बहुत अमीर लोग बढ़ रहे हैं? एक मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं थॉमस पिकेटी, उन्होंने अभी कहा है, नई किताब आई है जो फ्रेंच में है, अभी इंग्लिश में नहीं आई है, 2-3 महीने लगेंगे। उनका कहना है कि ये बिलियनियर यानी जो अरबपति हैं, ये समाज के लिए बहुत खतरनाक हैं और इन पर इतना टैक्स लगाया जाना चाहिए, जैसा कि अभी भीष्म पाल जी कह रहे थे, कि किसी तरह की ये बिलियनियर रह ना जाए समाज में, ये होना चाहिए। ये बहुत ही, लेकिन ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल, विवादास्पद टॉपिक,
बिल्कुल बहुत बहुत इस पे
टैक्स कम हो या ज्यादा, ये एक बहुत गंभीर विषय है।
चलिए रुख करते हैं अगले कॉलर का और जानते हैं कौन है हमारे साथ फोनलाइन पर। जी बताएं, अपना नाम बताएं और कहां से बात कर रहे हैं आप, बताएं।
मैं मोहम्मद शफी जम्मू कश्मीर से सर बोल रहा हूं जी।
जी शफी साहब बताएं, आपकी राय क्या है इस पर?
सर बात ये है कि अमीर जो है वो अमीर तर हो गया है, जब तक अमीर लोगों पर लगाम ना लगाया जाए, उन पर डबल टैक्स ना लगाया जाए, तो गरीब का पैसा चला जाता है और ये चंद लोगों के हाथों में जो है ये गवर्नमेंट आ गई है। जीएसटी ने तबाह कर दिया, फिर नोटबंदी ने तबाही कर दी। आज मैं साफ कहना चाहता हूँ कि दुनिया मर रही है और गरीब से गरीब हो रहा है। नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, मर रहे हैं लोग, कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा वही वो पिछला जो आएंगे और वही गवर्नमेंटें दोबारा आएंगी, क्योंकि शौक था लोगों को कि हम एक बार वोट दें और हमें बहुत तरक्की मिलेगी। एक तरक्की का पता चल गया है, एक दिन आएगा फिर मनमोहन सिंह आएंगे। ये मैं कहना चाहता
जी, अपनी राय रखी, अब रुक करते हैं।
जम्मू कश्मीर के किस शहर से बोल रहे हैं बता सकते हैं क्या?
जी? आप जम्मू कश्मीर जी, आलोक जी आपसे कुछ पूछना
चाहते हैं। आप किस शहर से बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर के किस हिस्से से?
मैं जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर।
पुंछ से, मतलब आप जम्मू इलाके से हैं?
हाँ, जम्मू इलाके से बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ।
जी शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। रुख करते हैं अगले कॉलर की ओर। जी आप अपना नाम जी नाम बताएं अपना।
हेलो
जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
हाँ जी
जी, बताएं अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं अभी बताएं।
जी मैं गुजरात से भरूच डिस्ट्रिक्ट विलेज हंसोट से उस्मान चौहान बोल रहा हूँ।
जी चौहान साहब अपनी राय रखें।
देखिए सब आलोक साहब को मेरा नमस्कार दीजिए, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ।
लीजिए आलोक जी, एक अगला श्रोता आपका। जी जी,
और दरअसल मैं मुद्दे पे आ जाऊँ।
जी
बात यह है साहब कि हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके तीन चार कारण की वजह से हम लोग आज पीछे हो गए। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी लंगड़ी हो गई है कि चल नहीं पा रही। उसकी वजह है कि आरबीआई से 3-4 हजार करोड़ रुपया ले लेना, और हमारे जो लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है वो हमारी प्रक्रिया 540 लोकसभा से चलती है, तो यहाँ तो 2.5 आदमी हमारे देश को चला है, एक मोदी और एक अमित शाह और आधे मोहन भागवत साहब, और इकोनॉमी हमारी कहाँ गई, कहाँ ले गई ये लोग, ये हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा देश चल ही नहीं पा रहा है। 2.5 आदमी कैसे चला पाएगा हमारे देश को, हमारा इतना खूबसूरत देश को तबाह कर रहे हैं ये लोग। तो अर्थव्यवस्था का तो बहुत बुरा हाल है साहब, तो अर्थव्यवस्था पे हम क्या बोलेंगे, हमारे देश के लिए हमको बहुत तकलीफ होती है।
बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब अपनी राय रखने के लिए। रुख करते हैं अगले कॉलर की ओर। जी अपना नाम बताएं।
हाँ जोशी जी को और पूरी टीम को, सब सुनने वाले को मोहन सिंह काजरा का नमस्कार। मैं मोहन सिंह काजरा बोल रहा हूँ,
काजरा की डाणी
जिला झुंझुनू राजस्थान से।
जी जी राय रखें अपनी।
मेरी राय ये है सर, आज से 30-35 साल पहले हमारे देश का ये अल्था रोज अखबार में रेडियम आता था, इतनी भूख मर गई, इतना भूख से मतलब मर गए, तो वो चीज तो बिल्कुल भी आज नक बराबर है। और अमेरिका के कंपटीशन के अंदर मतलब आज मतलब भारत के लोग जैसे मान लो कि गाड़ी नहीं बिकी मान लो, तो ये कोई मंदी की बात नहीं है
जी।
तो जैसे मान लो पहले कोई गाड़ी नहीं थी, आज गाड़ी, और कल न कहेंगे हेलीकॉप्टर नहीं बिके, मतलब ये जम्मू जेट नहीं बिके, तो ये आ गई मंदी, तो ये तो साफ मतलब एक बगैर मतलब की सी बात है।
बहुत बड़ी बात कही काजरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी से जुड़ा सवाल पूछता हूँ मैं आलोक जी से। आलोक जी, मैन्युफैक्चरिंग में कमी, कारें नहीं बिकना, ये सारी चीजें जो आते रहते हैं लगातार आंकड़े, क्या इससे माना जाना चाहिए कि बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है और जो एनएसएसओ के आंकड़े हैं वो एकदम सही है?
नहीं, ये जो काजरा जी ने कहा ये बहुत अच्छी बात, मुझे ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगी
कि
साहब गाड़ी नहीं बिकी तो इससे मैं क्यों मान लूं कि मंदी है। और ये सही बात है कि एक वक्त था जब हमारे देश में खाने को अनाज नहीं होता था, अब अमेरिका से दान में आया अनाज पे हमारा देश चला है, लेकिन अब हम एक बार अगर आत्मनिर्भर हो चुके थे, हम लगभग 8% की ग्रोथ रेट पे आ गए थे, साल में 8% हमारी इकोनॉमी बढ़ती थी, वहां से हम अगर वापस जा रहे हैं तो ये चिंता की बात है। हम लगातार 10% की बात करते थे कि डबल डिजिट ग्रोथ होगी, और भारत में ये संभावना है, इससे दुनिया में कोई इनकार नहीं करता। यहाँ जो इस वक्त आपके वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार हैं संजीव सान्याल, उन्होंने एक किताब लिखी है चर्न ऑफ द ओशन, वो कहते हैं कि एक वक्त था जब दुनिया की सारी इकोनॉमी हिंद महासागर के आसपास से चलती थी, और भविष्य में ऐसा दिन फिर आएगा, तो अगर हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं तो वो दिन जल्दी आना चाहिए। चिंता की बात यह है कि इकोनॉमी में और तेज़ रफ्तार आने के बजाय अगर गिरावट आ रही है और कॉन्ट्रैक्शन का या संकुचन का डर पैदा होने लगा है, तो फिक्र हो रही है। फिक्र इस बात से नहीं है कि कार न बिके, अगर देश भर के, और ये एक एक मुद्दा है जो उठना चाहिए, देश के तमाम शहरों में मेट्रो ट्रेन बन रही हैं, मुंबई में, दिल्ली में इतनी मेट्रो चल रही है, मुंबई में मेट्रो बन गई है, हर शहर जहाँ जाइए आज आप मेट्रो बन रही है, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा तो कारों की बिक्री कम होगी, लेकिन अगर वो कारों की बिक्री कम होगी तो उन कार फैक्ट्रियों में लगे हुए मजदूरों की नौकरियां जाएंगी।
बिल्कुल,
इसी तरह और बहुत सारे कारोबार हैं जहां आदमी की जगह मशीनें ले रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो एक तरह से दबाव है बड़ा भारी रोजगार पर, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दूसरा, गरीबों का क्या होगा, ये एक चिंता पूरी दुनिया कर रही है, हमको भी करनी पड़ेगी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात बार बार आ रही है और बहुत सारे विद्वानों को कहना है कि शायद आगे जाके वो एकलौता रास्ता रहेगा कि कुछ लोग कमाएंगे लेकिन उनको सबको खिलाना पड़ेगा।
लेकिन जहां तक बात है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 लाख से अधिक नौकरियां जाने की बात कही गई है, तो क्या ये जो सर्विस सेक्टर और जो ये शहरी लोगों के ये जो रोजगार हैं, क्या सिर्फ यही प्रभावित हो रहे हैं या माना जाए कि ग्रामीण भारत और कृषि से जुड़े लोगों पर भी फर्क पड़ रहा है?
पीछे जो थी वो बहुत तकलीफ की तस्वीर दिख रही थी, और ख़ास तौर पर कहा गया कि जो फार्म डिस्ट्रेस जिसको कहते थे कि खेती का संकट है, लेकिन अभी वही संगठन CMI नाम का संगठन, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, और हम बहुत वर्षों से उसको सबसे भरोसेमंद रिपोर्ट मानते रहे हैं, CMI की रिपोर्ट को
जी,
वो इस वक्त जो रोजगार का एक वो एक कहते हैं उम्मीद की किरण लाया है, और वो कह रहा है कि सितंबर के महीने में लेबर मार्केट में रिकवरी दिखाई पड़ी है जो पिछले 3 साल में सबसे अच्छी है, और इसमें ये कह रहे हैं, इसकी खास बात यह है कि इसमें गांव के रोजगार बढ़ते हुए दिख रहे हैं शहरों के।
लेकिन 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 आलोक जी, ये सिर्फ लेबर मार्केट से जुड़ा हुआ है, लेकिन अलग अगर कृषि क्षेत्र की बात करें या जो ग्रामीण भारत में अलग रोजगार है,
गांव का जो लेबर मार्केट है वो तो उसमें जितने रोजगार गांव के होते हैं वो सारे जुड़े होते हैं, और ये CMI का डेटा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेटा होता है।
चलिए आलोक जी, रुक करते हैं अगले कॉलर का और जान लेते हैं कौन है। मैं जान सकता हूँ मेरी किससे बात हो रही है और आप कहाँ से?
हेलो, नमस्कार सर, मैं गांव बेरडा का बना तेसीगुड़ा मारानी जिला बाड़मेर से हरीश बेड बात कर रहा हूँ। आपके BBC की नियमित श्रोता सभी को मेरी तरफ से दीपावली के एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं।
जी, आपको भी बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, अपनी राय रखें।
जी, मैं तो अर्थव्यवस्था के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि हर चीज होती है वो धीरे धीरे है, जैसे कोई भी कुआं के अंदर पानी निकालने से एकदम खेती पकती नहीं है, उसी प्रकार है अर्थव्यवस्था के धीरे धीरे सुधार आएगा। रास्ते हमेशा 2 प्रकार के होते हैं, एक रास्ता गलत होता है, एक सही होता है, लेकिन गलत रास्ते पर हमेशा हर कोई खींचता है, लेकिन सही रास्ता उस होता है वहां पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। इसी प्रकार है कि अर्थव्यवस्था है उसमें धीरे धीरे सुधार आएगा, एकदम अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं कह सकते।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करते हैं अगले कॉलर का, सुनते हैं कौन है हमारे साथ। जी बताएं, आप अपनी राय रखें, मेरी किससे बात हो रही है, मैं जान सकता हूं? आपको आवाज आ रही है?
हेलो
जी, बताएं आप अपनी राय रखें।
जी, हम ग्राम नकाचाट का जिला पहले से ऊपर से बोल रहे हैं।
जी जी, क्या 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 सोचते हैं आप, अपनी राय रखें।
जी, हम तो ये सोचते हैं यहाँ सरकार जो है कि खाने को भी उसी को देती है जिसके पास पहले से पेट भरा हुआ है
जी।
और क्या नाम कि घर भी उसी को मिलता है जिससे पहले बना हुआ है, तो इस तरह से जब सरकार खुद ही गलत जगह पे पैसा लगाएगी, ऐसे लोगों की मदद करेगी, गरीबों को मदद ही नहीं करेगी, तो गरीब लोग आगे बढ़ेंगे कहाँ से और अर्थव्यवस्था कहाँ से सुधरेगा?
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक जी, संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी हाल में कॉरपोरेट टैक्स की दर घटाने का फैसला लिया और नया व्यापार शुरू करने वालों को कॉरपोरेट टैक्स में छूट देने का फैसला लिया, और जिस तरीके से RBI ने पैसा दिया भारतीय सरकार को 1.76 लाख करोड़, तो क्या इन सब चीज़ों से, इन सब पैमानों से अर्थव्यवस्था में तेजी लाई जाएगी और रोजगार इनसे कैसे मिलेगा, आपको क्या लगता है बहुत संक्षेप में?
देखिए, इन सबसे तेजी लाई जा सकती थी, लेकिन अभी इस वक्त इस पे एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया कि क्या इनसे तेजी आ सकती है, क्योंकि जो बहुत जानकार अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कुछ स्ट्रक्चरल समस्याएं हैं, बुनियादी प्रॉब्लम है, और वो अब कॉस्मेटिक इलाज से दूर नहीं हो पाएंगी, कोई बहुत ही गंभीर फैसला लेना होगा, और ये फैसले अतीत में जो हमारे अनुभव हैं
उन्हीं से रोजगार की
वो राजनीतिक फैसला होता है, कोई अर्थशास्त्री वो फैसला नहीं ले पाएगा।
जी आलोक जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही धन्यवाद हमारे श्रोताओं का भी जिनको शामिल नहीं कर पाए, उनसे माफी। BBC इंडिया बोल में आज इतना ही, अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। ताज़ा खबरों के लिए आए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। मोहम्मद शाहिद को दे अनुमति। नमस्कार।